ओम शांति। आज का राजयोग का ये सत्र जो है, कर्म की पहचान, और आज संसार के अंदर मनुष्य के सबसे अधिक प्रश्न अगर होते हैं तो कर्म फिलॉसफी को लेकर के ही होते हैं। ये कर्म का फल ऐसा क्यों, या ये कौन सा कर्म का फल है, या कल जैसे हमने एक प्रश्न देखा कि मनुष्य जीवन में ये प्रश्न बना रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बुरा सोचा नहीं, फिर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, या भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। उस सवाल का जवाब में एक पहलू हमने समय के महत्व के आधार से समझा कि कभी कभी समय का पर्दा जब उठता है तब पता चलता है कि उसमें क्या कल्याण समाया हुआ होता है, परंतु मनुष्य जीवन में जब भी ये प्रश्न आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उसका जवाब का दूसरा पहलू कर्म की गुह्य गति है। और जब कुछ दृश्य ऐसे हमारे सामने आते हैं जिसको देख करके मनुष्य के मन में ये और गहन विचार चलता है कि बहन जी इसमें समय की भी बात नहीं है, कुछ और महसूस होता है। तब यही कहते हैं कि कर्म की गति अति गुह्य है, और इस गुह्य गति के आधार पर कौन से कर्म का ये फल कहेंगे। मुझे याद आता है कि एक बार मेरा कार्यक्रम बंबई में था, एक कंपनी में प्रोग्राम था 3 से 5 दोपहर के समय में, शाम का समय मेरा फ्री था। तो जिस आश्रम पर हम थे, जिस सेंटर पर थे, वहां एक परिवार वाले आकर मुझसे कहने लगे कि बहन जी अगर शाम का समय फ्री हो तो हम आपका एक प्रवचन रखना चाहते हैं, हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, आध्यात्मिक विचार वाले लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए भी एक प्रवचन हो जाए। हमने कहा शाम का समय तो हमारा फ्री है ही है, भले आप रख सकते हो, और कोई कार्यक्रम नहीं है। बड़े खुश होकर के वो गए। अब जहां हमारा कार्यक्रम था दोपहर को, 5 बजे कार्यक्रम पूरा होने के बाद कुछ लोगों से मिलना करना था, कुछ प्रश्न उत्तर हुए, उसमें करीबन 5:30-6 हो गए हमें। तो जैसे हम निकलने लगे, जो बहन हमारे साथ थी वो कहने लगी कि बहन जी अगर अब हम सेंटर जाएंगे और उसके बाद उनके घर जाएंगे तो एक तो ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है, और कहीं अगर जाम में फंस गए तो 7 बजे भी उनके घर पहुंचेंगे नहीं। تو میں نے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا اگر یہاں سے سیدھا چلے تو. میں نے پوچھا کتنا دور ہے؟ کہا بس 10 منٹ کا راستہ ہے. میں نے کہا پھر تو بڑے جلدی پہنچ جائیں گے. تو کہنے لگے کہ وہ پریوار بہت اچھا ہے, اگر جلدی بھی پہنچ گئے تو they won't mind. کہا ٹھیک ہے چلیے. اب انہوں نے 1 گھنٹہ پہلے ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. ہم پہنچ گئے 6 بجے میں. تو جب ہم پہنچے تو دیکھا سارا پریوار بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا, کوئی سیریل چل رہی تھی. جیسے ہی ہمیں دیکھا تو ماتا پتا نے بچوں کو اشارہ کیا ٹی وی بند کر دو. تو بچوں نے اشارہ کیا ہم بند کرنے والے نہیں. آج کی دنیا میں ماں باپ کا کم ہی چلتا ہے بچوں کے آگے. ہم دیکھ رہے تھے تو ماتا پتا نے کہا کہ اچھا والیوم سلو کر. بچوں نے اس بات کو مان لیا, والیوم سلو کر دیا. اب وہیں بیٹھنا تھا, وہیں ان کی ٹی وی بھی چل رہی تھی. ان کا والیوم تو سلو کرا دیا, لیکن یہاں ماتا پتا ہم سے بات کرنے لگے, کیسا رہا پروگرام, کیا ہوا, کچھ لیں گے نہیں لیں گے, ایسے پوچھ تاچھ کر رہے تھے. تو ضرور ہے بچوں کو ڈسٹرب ہوگا. تو ان کے گھر میں جو سب سے چھوٹا والا بچہ تھا, 12-13 سال کا ہوگا, وہ اٹھ کر کے آیا اور مجھ سے کہنے لگا, دیدی پلیز ڈونٹ مائنڈ, لیکن آپ تھوڑا سائلنس رہیں گے نا تو اچھا رہے گا. بڑی سبھیتا پورن اس نے مجھے کہا کہ آپ چپ رہیے. مجھے بھی ہنسی آئی. اس کے بعد وہ اپنا جسٹیفیکیشن دینے لگا کہ ایسا ہے یہ سیریل بہت اچھی ہے اور ہم اس کو مس کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ آج اس کا اسپیشل ایپیسوڈ ہے اور اس اسپیشل ایپیسوڈ میں کوئی سسپنس کھلنے والے ہیں اور ہم اس کو ضرور دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بھلے دیکھیے. اب چپ رہنا تھا تو کیا کرتے. تو میں نے سوچا کہ دیکھے تو صحیح, ایسی کیا سسپنس اس کی ہے جس کارن اس نے مجھے چپ کرا دیا. میں دیکھنے لگی, لیکن ایک درشیہ کا کنیکشن دوسرے درشیہ سے نہیں تھا. کہانی کیا تھی وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, پرنتو بیچ بیچ میں ان کا کیا سسپنس کھلتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے, واہ بہت اچھا, بہت اچھا دکھایا. اب ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس میں کیا اچھا ہے. جب پورا ہوا تبھی بھی کوئی خاص بات نہیں لگی, پرنتو وہ بڑے خوش تھے, بہت اچھا دکھایا, بہت اچھا دکھایا. میرے سے رہا نہیں گیا, میں نے اس بچے کو بلا کر پوچھا اس میں کیا اچھا تھا. ایک درشیہ کا کنیکشن دوسرے درشیہ سے نہیں تھا, کہانی کیا تھی یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, تو کیا اچھا تھا. تو بچہ مجھے کہنے لگا کہ دیدی آپ نے سارے ایپیسوڈ نہیں دیکھے نا, اس لیے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ہم نے تو سارے ایپیسوڈ دیکھے ہیں نا, تو ہمیں کنیکشن سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ درشیہ کا کنیکشن کون سے ایپیسوڈ کے ساتھ تھا اور اس لیے ہمیں اچھا لگ رہا تھا. اتنا بول کر کے وہ تو چلا گیا, لیکن اس کے بعد میرا چنتن چلا کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ کے گیا. اور میں سوچنے لگی کہ 5000 سال کا یہ چکر اگر ہو تو ہمارے بھی کتنے جنم ہوں گے, اور ایک ایک جنم ایک ایک ایپیسوڈ ہے. अब ये लास्ट एपिसोड है कलयुग का, अब इसमें तो सारे सस्पेंस ही होंगे। जीवन के अंदर भी एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं है, हमारे जीवन में कोई कहानी भी नहीं है, लेकिन हर दृश्य का कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो होगा या नहीं होगा। अगर हमें भी सारे एपिसोड याद होते थे तो शायद उन बच्चों की तरह हम भी यही कहते थे, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन क्योंकि हमें एक भी एपिसोड याद नहीं है, इसलिए इस जीवन के अंदर जो दृश्य जो घटनाएं होती है उसको देख करके हम बड़े दुखी हो जाते हैं और यही कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही ऐसा होना था। लेकिन उसका कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो है या नहीं है? जरूर है। तो इसलिए कर्म की गुह्य गति, उसको कहा ही गया है गुह्य गति, डीप सीक्रेट ऑफ कर्म, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। लेकिन कर्म सिद्धांत भगवान ने जो समझाया है और आज दिन तक भी हम जानते उस सिद्धांत को, और वो सिद्धांत यही है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, ये कर्म सिद्धांत है। और ये स्पिरिचुअल लॉ कहो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म कहो, इतना एक्यूरेट है कि उसमें भगवान कुछ नहीं करता है, हमारे कर्म ही फाइनलाइज करते हैं। हर कर्म का जो प्रत्युत्तर है वो हमें प्राप्त होना ही है, जैसा किया वैसा प्राप्त होगा, जितना किया उतना प्राप्त होगा, और जो करेगा सो पाएगा, अटल है। इस नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता है, संसार की कोई शक्ति नहीं है जो इस नियम को बदली कर दे। इसलिए अगर हम आज इस बात को समझ ले, इस सिद्धांत को समझ ले, तो शायद आगे के हर कर्म के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, उसमें भगवान का कहीं रोल नहीं है। मुझे याद आता है महाभारत का वो दृश्य कि जब पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं, और कहा जाता है कि उस समय भगवान लेटे हुए थे, दुर्योधन सिरहाने जाकर के बैठ जाता है, अर्जुन पैरों के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही भगवान की आंखें खुली तो अर्जुन को सामने देखा, और देखते ही कहा, अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाएगा। अर्जुन ने कहा ठीक है तुम मांग लो। उस वक्त भगवान ने यही कहा कि ठीक है, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए बोलो। और एक वाक्य जोड़ दिया वहां पर भगवान ने, बहुत सूक्ष्म, और वो वाक्य था कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सारथी जरूर बन सकता हूं, सारथी बनकर कई रथ चलाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। जीवन भी एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में, युद्ध में, जहां हर कदम व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है, इस युद्ध में भगवान सारथी बन सकता है, लेकिन हमारे बदले वो युद्ध करे। ये कर्म की गुह्य गति अलाउ नहीं करती है कि भगवान हमारे कर्म में इंटरफियर करे। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यानी तुम्हारा जो जीवन का युद्ध है तुम्हें ही लड़ना होगा, मैं सारथी बनूंगा, गाइडेंस जरूर दूंगा, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बदले युद्ध करूं ये संभव नहीं है। तो भगवान हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं कर सकता है, कायदा नहीं है। हमारे जीवन का युद्ध हमें खुद लड़ना होगा और उसके लिए पास्ट के जो कर्म है वो सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार के या किस क्वालिटी का जन्म होगा और किस क्वालिटी का जीवन यात्रा होगी। इस जीवन यात्रा को भी हमारे कर्म फाइनलाइज करते हैं। आज अगर हम अपने आप को देखें एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में और हम ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर जीवन की क्वालिटी अच्छी है हमारी, अच्छे घर में अच्छी शिक्षा के साथ हम बड़े हुए, सभ्यतापूर्ण हमारा जीवन है, भाग्य है, ये बहुत बड़ा भाग्य है, तो अच्छे कर्मों का फल है। परंतु इस जन्म में ऐसा कोई कर्म न हो जो आगे का जीवन यात्रा हमारी कहीं न कहीं कोई तकलीफ की अनुभूति करा दे और अच्छे से अच्छा बन जाए, बहुत अच्छी बात। तो कर्म सिद्धांत जो है उसको हमेशा स्मृति में रखते हुए जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो हर समय एक जागृति के साथ कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे और वो महात्मा जी अपने आश्रम में साधना करते थे, कुछ शिष्य थे उसके पास। एक दिन महात्मा जी के मन में विचार आया कि मैं आगे कुछ तपस्या करना चाहता हूं, उसके लिए हिमालय में जाना चाहता हूं। तो उसने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि देख, मैं हिमालय में आगे तपस्या करने जाना चाहता हूं और मेरे पीछे आश्रम की संभाल तुम करो। ठीक है। महात्मा जी ने कहा कि मैं परसों सुबह सुबह निकल जाऊंगा, कल का दिन है मेरे पास में, अगर तुम मुझे कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, लेकिन याद रहे कि कल का दिन मेरा मौन का है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे कुछ पूछेगा तो मैं लिख करके जवाब दे दूंगा। रात में दोनों सो गए, दूसरे दिन जब सुबह उठे तो शिष्य के मन में विचार आया कि कम से कम मैं गुरुजी से इतना तो पूछ लूं कि उनके पीछे मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा। तो गुरुजी के पास जाता है और पूछता है कि गुरुजी, कम से कम आप मुझे इतना बता दो कि आपके पीछे मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा एडमिनिस्ट्रेशन। गुरुजी का तो मौन था, कागज उठाया, कलम उठाई और उस पर एक शब्द लिख दिया, अवेयरनेस, जागृति, और शिष्य को दे दिया। शिष्य ने देखा अवेयरनेस, दैट्स ऑल, कुछ नहीं। ये तो इजी है, माना मुझे जागृत रहना है। बाहर निकल गया कुटिया से, लेकिन बार बार जब वो कागज को देखे तो कंफ्यूज होता रहा कि गुरुजी ने और कुछ कहा ही नहीं, बस एक ही बात कही, जागृति। कुछ आगे कुछ पीछे भी लिख देते थे। जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया तो फिर से गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी कुछ आगे कुछ पीछे भी तो लिख दीजिए। गुरुजी ने फिर वो कागज उठाया, एक शब्द आगे जोड़ा, एक शब्द पीछे जोड़ा। आगे जो शब्द जोड़ा वो भी अवेयरनेस था, पीछे जो शब्द जोड़ा वो भी अवेयरनेस था। अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, जागृति जागृति जागृति। शिष्य के हाथ में जब दिया, शिष्य ने पढ़ा, सोचा कि ठीक है, गुरुजी यही कहना चाहते कि मुझे जागृत रहना चाहिए। उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी ही थी कि वो उसकी गहराई को समझ नहीं पा रहा था। बाहर निकला, बार बार उस कागज को देखे, बार बार यही सोचे कि गुरुजी ने और कुछ लिखा ही नहीं, तीन बार ये बात को लिखी, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। आखिर मतलब क्या है? कम से कम मतलब भी तो समझा देते थे कि जागृत माना कैसे जागृत रहना है मुझे। सोच सोच करके जब बहुत परेशान हो गया, फिर से गुरुजी के पास गया। गुरुजी को जाकर कहा कि गुरुजी कम से कम इतना बता दीजिए कि अवेयरनेस 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 इज इक्वल टू व्हाट। गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, लिख दिया इज इक्वल टू अवेयरनेस। मैसेज बहुत सिंपल था, लेकिन शायद उस शिष्य की समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी का मैसेज यही था कि व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन द सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। What is the quality of your thoughts for others? What is the quality of your speech? You have to be aware of that. What is the quality of your feelings? जागृत रहना है कि विचारों की quality क्या है, भावनाओं की quality क्या है, कर्म की quality क्या है, वाणी की quality क्या है, व्यवहार की quality क्या है, हर कदम जो हम उठाते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। कितना डीप मैसेज था। कर्म की गुह्य गति को लेकर के ये बात गुरुजी उसको समझाना चाहते थे कि हर कर्म के प्रति तुम्हें जागृत रहना है और वो कर्म को स्टिम्युलेट करने वाले विचारों के प्रति तुम्हें जागृत रहना है। कर्म करते वक्त तुम्हारा इंटरैक्शन में जो भावनाएं हैं उसके प्रति जागृत रहना है। कहां जागृति नहीं चाहिए? क्या हम भी अपने जीवन के अंदर इतनी ही अवेयरनेस को लेकर के चल रहे हैं? और अगर अवेयरनेस नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे हर कर्म से किसी न किसी को चोट पहुंचा रहे हैं और वो कर्म का फल, वो भावनाओं का फल, वो विचारों का फल सूक्ष्म गति को लेकर के भी हमें प्राप्त होना ही है। इसलिए कहा कर्म की गति अति गुह्य है, डीप सीक्रेट्स ऑफ कर्म, और उसको समझना आवश्यक है क्योंकि कर्म के साथ जन्म का कनेक्शन है। शास्त्रों में हमें ये बता दिया गया एक ही लाइन के अंदर कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा जन्म प्राप्त होगा, और इसीलिए जन्म में यही दिखाया गया कि 84 लाख योनियां हैं, और जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि प्राप्त होगी। आज वो 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ेगा हर कर्म का फल भोगने के लिए, और तब जाकर के लास्ट में मानव देह प्राप्त होगा। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि मानव देह अमूल्य है, क्योंकि बहुत जन्म के बाद वो प्राप्त होता है। परंतु आज हम आपको एक खुशखबरी देते हैं, और खुशखबरी ये है कि 84 लाख योनियां जरूर है संसार में, लेकिन मनुष्य आत्मा को हर योनि से गुजरना नहीं पड़ता है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। खुशखबरी नहीं है? खुशी नहीं हुई क्या कि मनुष्य जीवन फिर मिलेगा? ये दुख होने लगा, क्या कहेंगे? तो मनुष्य को मनुष्य योनि में ही जन्म प्राप्त होता है, उसको ये 84 लाख योनियों से गुजरना नहीं है। हाँ, शास्त्र में जो भाव से कहा गया है शायद उस भाव को हम समझे नहीं है, क्योंकि अगर तर्क की कसौटी पर इस बात को कसा जाए तो देखा जाता है कि मनुष्य के लिए यही कहा गया कि जैसा कर्म करेगा वैसी योनि प्राप्त होगी, उस योनि में जाना पड़ेगा कर्म का फल भोगने के लिए। शास्त्रों में ऐसे कहा कि मानो किसी ने हिंसा का कर्म किया तो कहेंगे उसको हिंसक योनि प्राप्त हो जाएंगी, कोई वाघ या सिंह बनना पड़ेगा, जहां उसका जीवन ही हिंसा के आधार पर चलता है। लेकिन ये कहां तक सत्य है? क्योंकि अगर मान लो कि मैंने कोई हिंसा की और उसके फल स्वरूप मुझे कोई हिंसक योनि में जाना पड़े, तो वहां मेरे संस्कार परिवर्तन होंगे या हिंसा के संस्कार और दृढ़ बनेंगे? क्या कहेंगे? और दृढ़ बनेंगे। तो फल कैसे मिला? फल उसको कहा जाता है कि जहां मुझे रियलाइजेशन हो कि ये कर्म गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था, और उस डीप रियलाइजेशन से उस संस्कार को मैं चेंज करूं। ये है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर मेरे संस्कार और दृढ़ बन रहे हैं, कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, तो फल कैसे मिला? मुझे याद आता है कि एक बार यहां ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, जैसे ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस चलती है माइंड बॉडी मेडिसिन की, ऐसे ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी। और उस ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत के बहुत सुप्रसिद्ध चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल कृष्ण अय्यर जी आए थे उस समय के। अभी तो वो नहीं रहे, लेकिन उस समय जब आए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने कहा कि हम जजेस जो है जजमेंट कैसे देते? तो कहा हमारे सामने केस आता है, उसकी सुनवाई होती है, और सुनवाई होने के बाद सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम जजमेंट दे देते हैं कि ये गुनाह जिस हालत में किया गया था उसकी सजा इतना साल जेल, एक चोर आया तो उसको इतना साल जेल, एक खूनी आया तो उसको गुनाह किस हिसाब से किया हुआ है तो या फांसी की सजा या आजीवन कारावास या इतने सालों की जेल, ऐसे हम लिख देते हैं जजमेंट, और हम सोचते हैं हमने सही जजमेंट दे दिया। लेकिन उसके बाद उस जजमेंट के बाद उस चोर को वहीं भेजा जाता है जहां दूसरे चोर है, उसी सेल में भेजा जाता है। एक खूनी को वहीं भेजा जाता है जहां दूसरे खूनी है, उसी सेल में भेजा जाता है। अब वहां जाने के बाद उसका स्वागत कैसे होता है? भाई एक और भाई हमारा आया और लाइक माइंडेड जहां मिल जाते हैं तो उनकी बातें क्या होगी? एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करने लगते अंदर ही अंदर, और कोई काम तो है नहीं, फ्रेंडशिप करते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ, तुम कैसे पकड़ा गया, और पूछने के बाद उनको टेक्निक सिखाते, ये करते थे तो नहीं पकड़ा जाता, ऐसा करते थे तो नहीं पकड़ा जाता है ना। और कभी कभी वो दोस्ती इतनी गाढ़ हो जाती है जो अंदर ही अंदर एक गैंग बन जाती है, और जब वो बाहर निकलते हैं तो पक्के चोर होकर के और टेक्निक सीख करके बाहर निकलते हैं। क्या यही हमारा जजमेंट है? माना जहां उस व्यक्ति को अपने गुनाह का कोई रियलाइजेशन नहीं है तो उसको सजा क्या दिया हमने? सजा उसको कहा जाए जहां उसको रियलाइजेशन हो कि ये कर्म जो मैंने किया वो बहुत गलत था और मुझे नहीं करना चाहिए, और वो सुधर जाए या परिवर्तन हो जाए, तब कहेंगे हाँ सही रूप में हमने सजा दिया। लेकिन अगर वो और पक्का चोर होकर के बाहर निकलता है और पक्का खूनी होकर के बदला लेने की भावना के साथ फरार होता है तो जजमेंट कैसे दिया? और क्या यही, ये बात सुनने के बाद मेरे मन में भी विचार आया, क्या भगवान का भी यही तरीका है सजा देने का, जजमेंट करने का, कि अगर मनुष्य ने गलत कर्म किया, हिंसा किया तो उसको हिंसक योनि में भेज दो, तो वहां उसके संस्कारों का न रियलाइजेशन है तो परिवर्तन कहां से होगा? तो भगवान का सजा देने का तरीका ये नहीं हो सकता है। और तब मुझे ये बात समझ में आई कि वास्तव में भगवान सजा देता ही नहीं, सजा तो मनुष्य के अपने कर्म ही उसको प्रदान करते। और उस बात पर जब चिंतन चलने लगा तो यही आया कि नहीं, मनुष्य उस योनि में नहीं जा सकता है अपने कर्म का फल भोगने के लिए। दूसरी बात, हम ये क्यों समझे कि जानवर योनि भोगना की योनि है, सजा की योनि है? क्या मनुष्य योनि सजा की योनि नहीं है? आज मनुष्य कितने रूप से सजा भोगता है? जानवर तो एक फिजिकल रूप से ही सजा भोगता है, मनुष्य मेंटल, इमोशनल, सोशल, कितने रूप से, खाली फिजिकल नहीं, कितने रूप से सजा भोग रहा है। तो सजा की या भोगना की योनि कौन सी है, मनुष्य योनि है या जानवर योनि है, क्या कहें? तो आज से पहला ये बैरियर जो है हम निकाल दें कि जानवर योनि भोगना की योनि है, जानवर योनि भोगना की योनि नहीं है। पंछियों को देखो, मस्त गगन में उड़ रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस है ना? और मनुष्य को तो कितने प्रकार का स्ट्रेस, कितने प्रकार की भोगनाएं। और दूसरी बात ये आती है मन के अंदर कि मान लो कि मनुष्य अनेक योनियों में गुजर करके अपने कर्म का फल भोग करके लास्ट में जब मानव देह को प्राप्त करे तो हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए, हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए ना। तब कई बार कई लोग जन्मते ही डिफेक्टेड होते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आजकल तो मां के गर्भ में बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ता है, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले कौन सा कर्म किया उसने? अगर पूर्व कर्म कहे तो वो तो भोग के आया ना, सारी योनियों में जाकर के आया, भोग करके आया, तो अब जब मानव योनि में आया तो परफेक्ट होना चाहिए, गोल्डन स्पून इन माउथ होना चाहिए। लेकिन जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले उसको तकलीफ है, डिफेक्ट है, तो पैदा होते ही उसने कौन सा कर्म किया जो उसको ये भोगना के साथ जन्म लेना पड़ रहा है? तो इसलिए भी ये हिसाब बैठता नहीं है। तो मनुष्य योनि में ही उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। और ये जो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, ये एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ पैदा होता है और दूसरे बच्चे को जन्मते ही दूध भी नसीब नहीं होता है, ये कर्म का फल है। और पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से ही ये फल भोगता है। तो मनुष्य योनि में ही उसको अपने कर्म के फल को भोगना पड़ता है, दूसरी योनियों में जाकर के नहीं। और आज मनुष्य को कितने रूप से भोगना भोगनी पड़ती है, जीवन में उदासी आती है, क्या ये भोगना नहीं है? स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्या ये भोगना नहीं है? दुख दर्द बीमारी ये सारी क्या भोगना नहीं है? कभी कभी तो इतनी भोगनाओं से उसको गुजरना पड़ता है कि आखिर मनुष्य थक करके हार करके सुसाइड कर लेता है, आपघात करने का सोच लेता है। कभी सुना कोई जानवर ने आपघात किया? तो भोगना की योनि कौन सी है, मनुष्य योनि है कि पशु योनि है? मनुष्य योनि है। तो इसीलिए कहा कि सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल, इमोशनल, सोशल, हर रीति से उसको भोगनाओं से गुजरना पड़ता है। इतना वो महसूस करता है कि कभी कभी आपघात करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आपघात करने के बाद भी उस कर्म के फल से तो छूट नहीं सकता है। दूसरा जन्म लेगा, वहां जाकर उस कर्म का फल फिर से भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो आपघात करना इमैच्योरिटी मानी जाती है या समझ की कमी मानी जाती है कि अरे यही भोग लो, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड क्यों करते हैं। तो आज से ये बात हम अपने दिमाग से निकाल दे कि जानवर योनि भोगना की योनि है। नहीं, जानवर योनि भोगना की योनि नहीं है, मनुष्य योनि भोगना की योनि है। और इसलिए हमें अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। कुदरत का भी ये नियम है, जैसा बीज वैसा फल। आज मैं आम का बीज डालूं तो मुझे उसमें से एप्पल नहीं मिलने वाला है, या आम का बीज डालूं तो उसमें से मुझे चीकू नहीं मिलने वाला है, जबकि दोनों पेड़ बाजू बाजू में लगाए जाते हैं। वही धरनी है, वही हवा है, वही पानी है, वही सूर्य की धूप है, उतनी ही मात्रा में, लेकिन एक बीज से दूसरा फल नहीं निकल सकता है, कायदा है। ठीक इसी तरह आत्मा भी एक बीज है, और उस बीज को परमात्मा ने जब मनुष्य योनि में रोपित कर दिया तो उसमें से दूसरा फल जानवर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। या एक आत्मा को जानवर योनि में रोपित कर दिया तो वो मनुष्य कैसे बन सकता है? जिस तरह एक बीज से दूसरा फल नहीं निकलता है, अगर पूछा जाए कि क्या कारण है, क्यों नहीं मिलता है, तो यही कहेंगे हर बीज की कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अपनी है, फीचर्स अपने अपने हैं, उसकी पोटेंशियल, हर चीज अपनी अपनी है। इसलिए एक बीज से दूसरा फल नहीं निकल सकता है। ठीक इसी तरह हर आत्मा की पोटेंशियल भी अपनी अपनी है। जानवर योनि की जो पोटेंशियल है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो मनुष्य योनि के नहीं है, और मनुष्य आत्मा की जो पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो जानवर योनि के नहीं। तो एक बीज से दूसरा फल कैसे मिलेगा? आज मनुष्य योनि की विशेषता क्या है कि मनुष्य योनि में एक्स्ट्रा समझ है, 10 साल का प्लानिंग कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, इतनी पोटेंशियल है, विवेक यूज कर सकता है, उसके बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे उसके बारे में भी सोचकर इकट्ठा कर लेगा, और जानवर शाम को क्या खाना है वो भी इकट्ठा नहीं करता है। उसकी विवेक शक्ति बहुत कम है, है ये नहीं कि नहीं है, बहुत कम है मनुष्य के हिसाब से। उसकी प्लानिंग करने की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी नहीं है। तो मनुष्य आत्मा की जो विशेषता है वो जानवरों की नहीं है, और जो जानवर की विशेषता है वो मनुष्य में नहीं है। जानवर की कौन सी विशेषता है कि आज कोई नेचुरल कैलामिटीज होने वाली होती है तो पशु पक्षियों को पहले पता चलता है। मनुष्य के पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो बता नहीं सकता है कि भाई 1 घंटे के बाद भूकंप आने वाला है, नहीं बता सकता है। और पशु पक्षी के पास ये सेंसर बहुत पावरफुल है जो पहले ही वो आवाज करने लगते हैं, अलग प्रकार की हरकतें करने लगते हैं, ये बताता है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो हमारे पास नहीं है और हमारी जो कैपेसिटी है वो उनके पास नहीं है। तो हर आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है, इसलिए भी मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जा सकता है, या पशु आत्माएं मनुष्य योनि में नहीं आ सकती है। तब कई बार कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं, फिर जानवर को कभी मन नहीं होता होगा कि हम मनुष्य बने? तो मैं एक ही बात पूछती हूं उनको कि क्या कभी मनुष्य को ये मन होता है कि हम जानवर बने? अगर हमें मन नहीं होता है तो उनको कहां से होगा? हर आत्मा अपनी अपनी योनि में बहुत खुश है। कैसे कैसे पता चला कि जानवर योनि में जानवर लोग बहुत खुश हैं? जिस तरह आज एक मनुष्य अगर बहुत दुखी हो, पीड़ित हो, अनेक बीमारियां उसको है, और भगवान उसके सामने प्रसन्न हो जाए और पूछे कि भाई तुम इतना तकलीफ में है, बीमार है, इतने पीड़ित है, तुम्हें दूसरा जन्म कोई पशु पक्षी का दे दूं या कीड़ा मकोड़ा का दे दूं, तो क्या कहेगा मनुष्य? क्या कहेगा? नहीं जाना चाहता है। इतनी बीमारियां, तकलीफ, पीड़ा होने के बाद भी वो इसी योनि में रहना चाहता। इसी तरह आपने जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को भी देखा होगा कि जब अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं ना, और उसको धूप में रखो तो कीड़ा भी अपनी जान बचाने भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसको अपनी योनि अति प्रिय है, इसलिए भाग रहा है। एक बार मैंने एक कार्टून देखा और कार्टून में यही देखा कि 3 बंदर आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला बंदर कहता है कि सुना है कि मनुष्य कहता है वो हमारी वंशज है, तो दूसरा बंदर कहता है क्या कहा, मनुष्य की प्रमोशन हो गई क्या? तो तीसरा बंदर कहता है मैं तो कभी उसको अपनी वंशज के रूप में स्वीकार न करूं, ये तो इतना गिर चुका है, आज मनुष्य मनुष्य का खून का प्यासा हो गया है, ये हमारे संस्कार ही नहीं है। इतना बड़ा कटाक्ष था मनुष्य की मनोवृत्ति पर कि आज बंदर भी हमें अपनी वंशज के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते। इतना मनुष्य अपने कर्मों से गिर चुका है। माउंट आबू जब जाते हैं रास्ते में बहुत बंदर आते हैं, तो उछल कूद मचाते रहते हैं। एक बार जब हम जा रहे थे माउंट में तो देखा कि सामने से एक ट्रक आ रहा था, बंदर उछल कूद कर रहे थे, तो इस तरफ से इस तरफ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, कूद रहे थे। वो ट्रक आ रहा था तो एक बंदर का जजमेंट थोड़ा फेल हो गया, उसी समय वो कूदा और सामने जाने के लिए, और वो टक्कर लगी ट्रक की और बेहोश होकर के जैसे गिर गया। ट्रक तो निकल गई और हमने देखा कि सारे बंदर उछल उछल करके वहां पहुंच गए। भाई उनका एक साथी को टक्कर लग गई, उछल उछल करके वहां पहुंच गए और सब आसपास होकर के उसको बैठ गए। उन्हें महसूस हुआ कि इसको टक्कर जो लगी है बेहोश हुआ है, मरा नहीं है, जिस भी विधि से पता किया हो, है ना। डॉक्टरों को तो अनेक साधन चाहिए लेकिन उनको वो साधनों की आवश्यकता नहीं है, महसूस कर लिया कि भाई ये बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा कि सारे बंदरों ने मिल करके उसको खींच करके साइड में कर दिया ताकि दूसरा कोई वाहन उसके ऊपर से न चला जाए, और बैठे रहे उसको होश आने तक। और जैसे ही बैठे रहे, जैसे ही उसको होश आया, जैसे बड़ी खुशी हो गई उनको, और सब जैसे वापस खुशी में आकर के एक दूसरे के साथ में मिलकर के खेलने लगे। ये बंदर है। और हम भी जा रहे थे अहमदाबाद, पालनपुर आने से पहले ही हमारा कार का एक्सीडेंट हुआ, पूरा एक ट्रक के अंदर घुस गई। सबकी दुआएं थी या ईश्वर की कृपा कहो के हमें खरोच तक नहीं आई, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था तो अंदर ही थे, क्योंकि इस तरह से सारी गाड़ी नुकसान हो गई। हमने देखा गाड़ियां जाती रही, देखते रहे लोग, लेकिन खड़े होने की समझ नहीं थी या पूछे कि बहन जी कुछ हुआ, आपको कोई मदद चाहिए? नहीं, हमसे तो बंदर अच्छे। आज ये मनुष्य है, इतना समझदार, इतना शिक्षित होने के बाद भी उनके अंदर ये भावना नहीं है। व्हाट्सएप पर भी एक बार एक क्लिप आई हमारे पास में कि हाईवे पर इतनी गाड़ियां चल रही है, फाइव लेन का रास्ता था, और एक कुत्ता जो है एकदम उसको टक्कर लगी। शायद आप लोगों के पास भी ये क्लिप आई होगी, आपने देखा होगा। दूसरा कुत्ता दौड़ करके उसको खींच खींच करके ले आता है, बचाते बचाते रास्ते के किनारे पर, और वो कुत्ता बच जाता। और एक मनुष्य का बच्चा, उसकी माँ उस बच्चे को लेकर के मार्केट में गई थी, कब वो बच्चा दुकान से बाहर निकल करके आ गया एक गाड़ी की टक्कर लगी, गिर जाता है बच्चा, वो गाड़ी वाला पहिया उसके ऊपर से चला के ले जाता है। लोग वीडियो खींच रहे हैं, कोई दौड़ा नहीं उस बच्चे को मदद करने के लिए। दूसरा वाहन आया, वो भी उसके ऊपर से चढ़ा के ले गया, बच्चा तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। माँ अंदर से एकदम दौड़ के आई, देखती है बच्चा इतना तड़प रहा है, उठा करके लिफ्ट मांग रही है कि कोई हॉस्पिटल पहुंचा दे। कोई ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, दौड़ते हुए जाती है, हॉस्पिटल पहुंचती है, वो बच्चा मर गया। कुत्ता बच गया, बच्चा मर गया। ये है आज के मनुष्य। इसलिए कहा कि इतना बड़ा कटाक्ष था मनुष्य की मनोवृत्ति के ऊपर कि बंदर भी हमें वंशज के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। कहते ये तो एक दूसरे का खून का प्यासा है, ये हमारे संस्कार हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा कि डार्विन की जो थियरी है कि बंदर से मनुष्य बना, बंदर से मनुष्य नहीं बना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एंट्रोपी एवरीथिंग मूव फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज टू अ डिसऑर्गेनाइज स्टेज, न कि डिसऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की ओर। मनुष्य अपने पूर्वजों के रूप में अगर देखा जाए तो बंदर नहीं, असभ्य नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा सभ्य था, दिव्य सभ्यता जिसके अंदर थी, और वहां से गिरते गिरते आज मनुष्य बना। तो डार्विन की थियरी हाइपोथेसिस है, आज मॉडर्न साइंस ने उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि अगर बंदर से मनुष्य बना हो तो आज भी वो स्पीशीज के बंदर है। जू में देखने को मिलता है, होमो सेपियंस ऐसे लिखा होता है वहां पर। अगर साइंस टेस्ट ट्यूब बेबीज पैदा कर सकता है, क्लोनिंग कर सकता है, तो क्या उन बंदरों को मनुष्य बनाकर नहीं दिखा सकता है? तो इसीलिए मॉडर्न साइंस ने डार्विन की थियरी को भी डिस्कार्ड कर दिया है कि हमारे पूर्वज कोई बंदर नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज बहुत दिव्य सभ्यता वाले थे, वहां से हम गिरते गिरते मनुष्य बने। और वैसे भी आज विज्ञान ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं तो अब विज्ञान भी, मेडिकल साइंस भी रीबर्थ में मानना शुरू कर दिया है। क्या मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है? कई जगह ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं, और किसी ने आज दिन तक ये नहीं बताया कि मैं जानवर से मनुष्य बना, ये नहीं बताया है। मनुष्य से मनुष्य बना, जिसको भी अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां आ गई है, वो पूर्व जन्म की स्मृतियां यही बताती है कि वो मनुष्य से ही मनुष्य बना है। और विदेशों के अंदर तो कई बार साइकोलॉजिकली कैरिड फॉरवर्ड जो फोबियाज होते हैं उसको ठीक करने के लिए भी पास्ट लाइफ में जब ले जाते हैं तो पता चलता है, और उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं जो साइकोलॉजिकली कैरिड फॉरवर्ड होती है। तो इसलिए वैज्ञानिक सबूत भी आज ये बताता है। बहुत अच्छी बात एक जानने को मिली, एक नई रिसर्च जिसको कहा जाता कि अमेरिका के अंदर कुछ डॉक्टर्स की टीम है जो इस बात के ऊपर रिसर्च कर रही है। आप लोग ने भी सुना होगा डॉक्टर रेमंड मूडी का नाम, डॉक्टर रेमंड मूडी जो लोगों को हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। उसकी टीम में एक भारतीय डॉक्टर भी है, और वो भारतीय डॉक्टर बीके है। और उनके टीम में ये डॉक्टर्स इसीलिए अलग अलग भाषाओं वाले उसे रखे हैं ताकि जब पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और कई बार वो उस भाषा में बोलने लगते हैं तो क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता है। तो जब भी वो बहन यहां पर आती है, जो डॉक्टर है वो आती है, तो उनका लेटेस्ट रिसर्च बताती है। तो पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने एक बहुत वंडरफुल बात सुनाई। तो कहा कि जब उनको पास्ट लाइफ में ले गए, अधिकतर जितने लोगों को ले गए वो लोग, तो उनसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछा और वो सवाल था कि जब आप शरीर छोड़ते हैं उसके बाद कहां जाते हैं, सीधा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं या भगवान जैसी कोई चीज है और उसके पास जाते हैं और भगवान आपको फाइनलाइज करते हैं कि आपको ये घर में जन्म लेना है, ये घर में जन्म लेना है, कहां जाते हैं। तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मेजॉरिटी ने यही जवाब दिया कि शरीर छोड़ने के बाद हम एक लाइट की दुनिया में जाते हैं और वहां एक बहुत पावरफुल लाइट से मिलते, शायद वही भगवान था। क्या कैसे पता चला आपको कि वही भगवान था? तो कहा क्योंकि वो भगवान इतना प्यार दे रहा था, इतना प्यार बरसा रहा था कि जैसे हम प्यार के फव्वारे में नहा रहे थे। इतना प्यार भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए वही भगवान। बहुत डिवाइन लाइट थी, बहुत पावरफुल लाइट थी। क्या उसके बाद क्या उसने फाइनलाइज किया कि आपको कहां जाके जन्म लेना? क्या नहीं, भगवान फाइनलाइज नहीं करता है। का जब हम उस फवारे में नहा रहे होते हैं, प्यार ही प्यार जैसे बरसा रहे हैं भगवान, तो उस प्यार में जैसे हमारा शुद्धिकरण हो रहा होता है, हम बहुत क्लीन हो जाते, शुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे शुद्ध जब हो जाते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं, उसके बाद हमारे सामने हमारी जीवन यात्रा की एक फिल्म की तरह पूरी जीवन यात्रा हमारे सामने से गुजरती है। और इतनी शुद्ध अवस्था में होने के कारण, क्योंकि परमात्मा प्यार में जैसे हम इतने शुद्ध हो गए, तो जब वो फिल्म चलती है हमारे जीवन यात्रा की, तो एक एक कर्म को देख करके हमें लगता है ये कर्म मैंने किया, इतने बुरे कर्म किए, इतने लोगों को मैंने चीट किया, उतने लोगों के साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया। तो एक एक कर्म मेरे सामने जब आता है तो हमें अपने ही कर्मों को देख करके बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो कहा उसके बाद क्या भगवान सजा देता है? कहा नहीं, भगवान सजा नहीं देता, भगवान प्यार ही देता है। तो उसके बाद क्या होता है? तो कहा उसके बाद हमें ये फील होता है कि जो बुरे कर्म मैंने किए, जिसके साथ मैंने बुरे कर्म किए, चीट किया या किसी को भी धोखा दिया या जो भी मैंने बुरा व्यवहार किया, उन सब के साथ का हिसाब किताब मुझे चुप चुप कर देना है। और इसलिए हम वहां से वापस आते हैं और वापस आने पर हम खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे कहां जन्म लेना चाहिए, ताकि उन आत्माओं के साथ मैं जल्दी से जल्दी हिसाब चुकतू कर दूं। तो हम डिसाइड करते किस घर में हमें जन्म लेना है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कर्म का फल हम कैसे चुकाएंगे, इसके लिए होनी को फाइनल करते हैं, डेस्टिनी को फाइनल करते हैं कि ये डेस्टिनी होगी और ये कर्म का हिसाब हम ऐसे चुकतू करेंगे। तो सारी जो डेस्टिन्ड बातें हैं उसको हम फाइनलाइज करते हैं। इसलिए कहावत है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि वो होनी हमने ही फाइनलाइज की होती है। उसके बाद उन्होंने कहा, बहुत बहुत सकल बातें उन्होंने सुनाई और कहा उसके बाद जब होनी फाइनल हो जाती है, सारी होनियों को फाइनल कर देते हैं, उसके बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि किस दिन हमारा जन्म होगा, तो जन्म की तारीख को फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद ये भी हम फाइनलाइज करते हैं कि ये हिसाब चुकाने के लिए हमें कितने साल चाहिए। तो आयुष्य को फाइनलाइज करते कि भाई 5 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, 50 साल चाहिए या 100 साल चाहिए, कितना साल मुझे चाहिए ये हिसाबों को चुकतू करने के लिए, तो आयुष्य को फाइनलाइज करते हैं। और आयुष्य को फाइनलाइज करने के बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि ये शरीर छोड़ने के लिए कौन सा कारण बनेगा, कौन सी होनी बनेगी, उस मृत्यु का कारण भी हम फाइनलाइज करके फिर उस दिन को भी फाइनलाइज करके हम जन्म लेते हैं या शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जन्म और मृत्यु की तारीख को कोई बदल नहीं सकता है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। क्यों ऊपर से बन के आती है? क्योंकि हमने ही फाइनलाइज किया होता है कि कौन सी जोड़ी मुझे चाहिए अपने कर्मों का हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए, ये हम ही फाइनलाइज करते हैं। कहा उसके बाद क्या आपको याद रहता है? तो कहा 2 साल तक हमको बहुत अच्छे से याद आता है कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं। और उसके बाद जो जो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, हम उसी समय उनको जिस जिस को दुख दिया होता है उनके सामने मुस्कुरा करके उनको सुख देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी वाचा खुलती है, हमारा मोह क्रिएट होता है परिवार के सदस्यों के साथ, वाचा खुलने के बाद विस्मृति हो जाती है कि हम किस लिए आए। और इसलिए जब होनी होनी होती है, वो होनी को भूल जाते हैं कि ये हमने ही फाइनलाइज किया है, तब ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, भगवान नहीं करता है, हमने खुद ने फाइनलाइज किया है। इतना गुह्य राज स्पष्ट हुआ है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से। शायद उसका यूट्यूब के ऊपर है, आप जा करके देख सकते हैं जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके बारे में। बहुत सुंदर उस डॉक्टर ने जो वर्णन किया और उसके साथ जो स्लाइड्स थी, जो प्रेजेंटेशन दिया गया, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर भी वो सारा क्लास इनका रिकॉर्ड है, वो सीडी आपको मिलती है, मृत्यु के बाद क्या है, आप सुन सकते हैं उनकी ही आवाज में कि मृत्यु के बाद कैसे हम हर चीज फाइनलाइज करते हैं। और ये फाइनलाइज भगवान नहीं करता, इसलिए कहा भगवान हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं करता है, वो सिर्फ प्यार ही प्यार देता है और प्यार देते हुए हमें इतना शुद्ध कर देता है जो हमें खुद रियलाइजेशन हो अपने कर्मों के बारे में और हम जाकर के अपने कर्मों का फल फाइनलाइज खुद करते हैं। कितनी गुही बात है ये, इतनी सटल और इतनी गहरी बात है, डीप सीक्रेट्स ऑफ कर्म इसीलिए कहा गया है। तो अब हमारे जन्म कितने, अगर 84 लाख जन्म हो और 5000 साल का चक्र हो तो आयुष्य कितना होगा? 5000 साल में 84 लाख जन्म लेने हो तो आयुष्य कितना होगा? हिसाब बैठता ही नहीं है। तो शास्त्रों के अंदर कहा गया है लक्ष्य 84। लक्ष्य के 2 अर्थ है, एक अर्थ लक्ष्य माना लाख और दूसरा लक्ष्य माना ध्यान, ध्यान देना कहते हैं, लक्ष्य लक्ष्य से लक्ष्य में रखते हुए काम करना, ध्यान में रखते हुए काम करना। यानी हर जन्म जो हम जन्म में जो कर्म फाइनलाइज करते हैं उसको ध्यान में रख करके करना। और इसीलिए सिर्फ 84 जन्म अगर कहे लक्ष्य 84, सिर्फ 84 जन्म। अगर सिर्फ 84 जन्म कहे तो हिसाब देना पड़े कि हमने 84 जन्म कैसे लिए, जो हिसाब आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए भगवान आकर के उस हिसाब को हमें स्पष्ट करता है कि हमारे कितने जन्म, 84 जन्म मैक्सिमम, मिनिमम 1 जन्म, लेकिन वो जन्म भी हम कैसे चारों युग में, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में प्राप्त करते हैं। तो आज अगर देखा जाए कि एवरेज लाइफ स्पैन मनुष्य का कितना है, क्या कहेंगे एवरेज लाइफ स्पैन? 60 to 70, राइट? 60 to 70। अच्छा, हमारे जो पूर्वज हो गए उनके एवरेज लाइफ स्पैन कितनी थी? 80-90 तक, राइट? उनके जो पूर्वज थे उनकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी थी? 90-100 के आसपास जीते थे। अच्छा, उनके जो पूर्वज त्रेता युग में कहो, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी हो सकती है? 100 साल से ऊपर। और उनके पूर्वज सतयुग के अंदर उनकी लाइफ स्पैन कितनी हो सकती है? फुल लाइफ स्पैन होगी, 150 साल के आसपास, है ना? अगर एक ही सवाल में आप सबसे पूछूं कि इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी आयुष्य कम क्यों होती गई? हमारे पूर्वज अगर 80-90-100 तक जीते थे, उस समय इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उनकी आयुष्य ज्यादा थी। और आज इतनी मेडिकल फैसिलिटी के बाद भी आयुष्य कम क्यों हो रही है? क्या जवाब है आपके पास? स्ट्रेस? और क्या पहले के लोगों को स्ट्रेस नहीं होता था? नहीं होता था। अच्छा, तो स्ट्रेस एक कारण है। और एक्सीडेंट्स बहुत हो गए इसलिए। और अच्छा, अगर मैं आपको जवाब दूं कि इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी आयुष्य क्यों कम हो गई, क्योंकि आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। आत्मा की जो पोटेंशियल है उसमें वीकनेस आ गई है। आपने प्रैक्टिकल देखा होगा और अनुभव किया होगा, क्योंकि आप तो रोज पेशेंट से मिलते हैं। आप पेशेंट्स को जब ऑपरेट करते हैं और उनको ऑपरेशन के बाद जो दुख दर्द होता है, तो दर्द के बाद क्या कहते हैं? कई बार आपने सुना होगा, अरे इससे तो मर जाते थे तो अच्छा होता था, है ना? बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दर्द है, उस पीड़ा को सहने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन हमारे पूर्वजों में इतनी शक्ति थी कि उनको मरने का ख्याल नहीं आता था। आज की दुनिया में जरा थोड़ी तकलीफ आई, कोई भोगना भोगनी पड़ी कि तुरंत ये विचार आता है इससे तो मर जाएंगे तो अच्छा होगा। मर जाने का विचार पहले आता है, माना इतनी भी आत्मा में सहन शक्ति नहीं है, इतनी भी आत्मा में वो पावर नहीं है कि उस दुख दर्द को झेल सके, इतनी पावर नहीं है। पावर ही खत्म हो गई, आत्मा की शक्ति इतनी नील के बराबर हो गई, तभी तो स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस क्या चीज है? जब आत्म शक्ति क्षीण हो जाती है तो हर छोटी बात मन को इरिटेट करती है या मन के अंदर स्ट्रेस को क्रिएट करती है, स्वाभाविक है। पहले के लोगों में इतनी सहन शक्ति थी कि छोटी छोटी बातों को वो निग्लेक्ट کر کے آگے بڑھ جاتے تھے. لیکن آج کی دنیا میں جرا کچھ ہوتا ہے کہ ترنت منوشیہ کو مرنے کا وچار پہلے آتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ آتم شکتی کتنی کھیڑ ہو گئی ہے. اس لیے آپ لوگوں کا پرابلم نہیں ہے, آتم شکتی کھیڑ ہو گئی ہے. تو باڈی بھی ریسپونڈ نہیں کرتی ہے. آپ لوگ پوری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, لیکن وہ پیشنٹ ریسپونڈ نہیں کرتا ہے. ریسپونڈ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ آتما کی شکتی کھیڑ ہے, اس لیے اس کے ریسپونڈ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. تو کیا کرے گا؟ اتنی بھی طاقت نہیں ہے جو کرمیندریہ کو وہ چلا سکے, یا اس کو جو آپ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس کو ریسپونس دے سکے. نہیں ہے طاقت. پہلے کے زمانے میں بھلے میڈیکل ٹیکنالوجی یا ایڈوانسمنٹ اتنی نہ ہونے کے بعد بھی آتما کی طاقت یا جینے کی اچھا اتنی پربل ہوتی تھی کہ بڑے سے بڑے چوٹ کو بھی وہ جیسے اس میں سے باہر نکل آتے تھے, باہر نکل آتے. اور آج بھی آپ یہ میجک دیکھتے ہیں, یہ میریکلز دیکھتے ہیں کہ جن آتماؤں کے اندر شکتی ہوتی ہے, ایک جینے کی اچھا ہوتی ہے, ان کے ساتھ کتنے بھی بڑے سے بڑے حادثے ہونے کے بعد بھی وہ سروائیو کر جاتے ہیں, وہ ریسپونڈ کرتے ہیں, اور آپ ان کو باہر لے آتے ہیں, اس سٹیج سے باہر لے آتے ہیں. کیونکہ آتما میں شکتی جہاں ہے وہاں باہر آ جاتے, تو اس کو کہتے ہیں میریکل ہو گیا. میریکل جیسی بات نہیں, لیکن آتما کی پربل اچھا کی بات ہے, یہ شکتی کی بات ہے. تو اسی لیے جو ستیوگ اور تریتا یوگ کے دیوی دیوتا تھے ان کی آیوشیہ بہت لمبی تھی, 125-150 سال کی آیوشیہ تھی, کیونکہ آتما اتنی سمپورن تھی, پاورفل تھی, شکتیشالی تھی. اسی لیے اور آج ہر انسان اپنے آپ کو بندھن میں محسوس کرتے ہوئے اتنا جیسے جکڑا ہوا ہے, اور اس لیے اس کے کرم ایسے ہیں تو جنم کا جو لائف سپین ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اس لیے تو ستیوگ کو اگر دیکھا جائے, ستیوگ کے اندر سوریہ ونش جس کو کہا, جہاں پوتر آتمائیں پرم دھام سے جب نیچے اترتی ہے تو کوئی نہ کوئی دیوی یا دیوتا کا سوروپ دھارن کر لیتی ہے, دیو یا دیوتا کا سوروپ. جہاں سولے کلا سمپورن, سمپورن نرویکاری, سرو گن سمپن, جہاں منشیہ کے کرم اکرم ہوتے ہیں, وہاں اکالے مرتیو کبھی نہیں ہوتی ہے. پوری آیوشیہ بھوگ کر کے سوئچھا سے شریر چھوڑتی تھی, اور پوری آیوشیہ بھوگنے کے کارن سواستیکا میں ہم نے دیکھا 5000 سال کا چکر ہو تو ہر یوگ ایک سمان ہے, یعنی 1250 سال کا ہر یوگ ہے, اور 1250 سال کے ہر یوگ کے اندر جہاں آتما سولے کلا سمپورن اتنی شکتیشالی, سمپورن نرویکاری, مریادا پرشوتم, سرو گن سمپن ہوتی ہے, اور اس کے کرم اتنے پاورفل ہوتے ہیں, تو دیوتاؤں کو کہا گیا امر. امر کا مطلب یہ نہیں کہ مرتے ہی نہیں تھے. جس نے بھی سنسار میں جنم لیا اس کو شریر چھوڑنا نشچت ہے, قاعدہ ہے. پھر دیوتاؤں کو امر کیوں کہا گیا؟ ہر دیوتا کا بھی شریر چھوٹا ہے, ہم سبھی ہی جانتے ہیں. سری کرشن کا بھی شریر چھوٹا پاردی کے باندھ سے, تو سری رام نے بھی اپنا شریر چھوڑا, شاستروں میں یہ ورنن ہے. تو ہر دیوی دیوتا نے بھی شریر چھوڑا ہے. تو جب شریر چھوڑا تو پھر اس کو امر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اکالے مرتیو نہیں تھی, پوری آیوشیہ بھوگ کر کے سوئچھا سے کہ اب میں نے بہت سال اس چولے میں بتا دیا, اب یہ چولا بہت پرانا ہو گیا, اب میں نیا چولا دھارن کرنا چاہتا ہوں, تو سوئچھا کے ساتھ سارے پریوار کو اکٹھا کرتے ہیں. جس طرح آج جنم دن منائے جاتے ہیں, और जन्मदिन मनाने के लिए सारे परिवार वाले इकट्ठे होते हैं। ठीक इसी तरह सतयुग के अंदर मृत्यु नाम का शब्द नहीं है, चोला वस्त्र बदली करना है, और इसलिए सारे परिवार वालों को इकट्ठा करके सबसे विदाई लेते हैं कि अब मैंने बहुत साल इस चोले में बिता दिया, अब मैं नया चोला धारण करने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए जाना चाहता हूँ। तो बड़े धूमधाम के साथ उसको विदाई देते खुशी से, इसीलिए वहाँ मृत्यु नाम की चीज नहीं है, रोना धोना नहीं है, लेकिन खुशी से विदाई देते, इसलिए उसको कहा अमर हो गए कि कर्म इतने अच्छे यादगार बन करके पीछे छूट गए तो अमर हो गए। तो जहाँ मृत्यु भी एक महोत्सव होता है, यहाँ जन्मोत्सव होता है, वहां मृत्यु भी एक महोत्सव है। आज की दुनिया में लोगों को मृत्यु नाम से डर लगता है। क्यों डर लगता है? मृत्यु के नाम से डर लगता है, भयभीत होते हैं। क्यों? और जीना क्यों चाहते हैं? भाई दुख दर्द है, नया चोला धारण करो। क्यों नहीं धारण करना चाहते? मृत्यु से डर लगता है। क्यों? मोह माया के कारण। मोह माया की बात नहीं है, मनुष्य जानता है कि मैंने जीवन पर्यंत इतने अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए पता नहीं अगर शरीर छूटा तो कहां जाके जन्म लेना पड़े, तो इसलिए वो मरना नहीं चाहता। कहते इससे तो अच्छा है कि भले यहां पीड़ा सहन कर लूंगा लेकिन यही रहूं मैं। डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने जीवन पर्यंत इतने बुरे कर्म किए हैं जो मुझे अच्छे घर में जन्म मिलने की अपेक्षा तो है ही नहीं, इसलिए पता नहीं किस गति को मैं प्राप्त करूंगा और वहां ये सुख सुविधा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए कहते मैं मरना नहीं चाहता। तो मृत्यु का डर कर्मों के कारण है, मृत्यु का भय कर्मों के कारण है। सतयुग में किसी को मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु नाम का शब्द नहीं है, क्योंकि हरेक के कर्म इतने श्रेष्ठ महान है तो डरने की बात ही नहीं है, इसीलिए अमर हो गए। हर कर्म अमर हो गया, यादगार हो गया, जो आज भी देवी देवताओं के हम गाथा भागवत के रूप में सुनते हैं, यादगार कर्म लीलाओं के रूप में हम सुनते हैं, है ना? और इसीलिए सतयुग में राज्य करने वाले श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, लेकिन श्री नारायण का जो बचपन का स्वरूप है, कभी उसका फोटो नहीं देखा आपने, उसका बचपन का स्वरूप कौन सा है? तो एक भजन याद आता है, आपने भी कई बार ये भजन गाया होगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव। श्री कृष्ण की पूरी जीवन कहानी उसमें बताई गई है, एक ही लाइन में। बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तब उसको गोविंद कहा, जब रासलीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और जब राजगद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण, वही वासुदेव है। ये वासुदेव की अलग अलग स्टेजेस है। तो अगर नाथ नारायण सतयुग में है, सत्य नारायण सूर्य नारायण सतयुग में, तो श्री कृष्ण कहाँ होना चाहिए? उसका बचपन तो वहीं होना चाहिए, और इसलिए सतयुग के अंदर 150 साल की जब आयुष्य है, इतने पूरी आयुष्य भोग के जब शरीर छोड़ते हैं, तो 1250 साल में सिर्फ 8 जन्म होते हैं, 8 जन्म वो भरपूरता से जीवन जीते हैं, पूरा सुख भोग करके जीवन जीते हैं, कर्म श्रेष्ठ। इसीलिए श्री कृष्ण की जब जयंती मनाते हैं ना, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी माना आठों जन्म की जयंती मना रहे हैं। वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ कृष्ण इन ऑल एट बर्थ, जन्म अष्टमी, आठों जन्म की जयंतियां मना रहे हैं। इसलिए बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उसका आठों जन्म इतना श्रेष्ठ था, सतयुग के हर जन्म इतना महान था, तो आठों जन्म की जयंतियां मनाते हैं, जन्म अष्टमी। और जैसे ही सतयुग पूरा हुआ और दूसरा युग आया जिसको कहा गया त्रेता युग, चंद्रवंश, जहां पर सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है, लेकिन जहां पर श्री राम का राज्य है, श्री रामचंद्र जिसको कहा, दो कला कम हो गई, 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला कोई गिनती की नहीं होती है, परफेक्शन का फिगर है। कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते, 16 आनी सच है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा होगा तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण है। तो 16 फिगर परफेक्शन का है ना। परफेक्शन के बाद धीरे धीरे इम्परफेक्शन की ओर यात्रा बढ़ेगी लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से। और इसलिए त्रेता युग में आए तो 2 कला कम हो गए, 14 कला धारी पर है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम इस युग में भी है, लेकिन सतयुग जितनी संपूर्णता न होने कारण आयुष्य थोड़ा कम हो गया। 2 कला कम हुई तो थोड़ा कम हो गया, और इसलिए 125 साल के आसपास जब आयुष्य हो जाती है तो जन्म बढ़ जाते हैं, 8 जन्म से 12 जन्म हो जाते हैं। तो सतयुग के अंदर श्री कृष्ण के 8 जन्म की जयंती मनाते हैं हम, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ आत्मा थी। और 8वां जन्म के बाद 9वें जन्म पर श्री राम का जन्म होता है, इसीलिए राम नवमी मनाई जाती है कि 9वें नंबर पर श्री राम है, तो उसकी जयंती भी इतनी ही महान थी, उसका जन्म भी इतना श्रेष्ठ था, तो उसके जन्म का भी हम जश्न मनाते हैं। कितना सुंदर, भक्ति के अंदर हर चीज इतनी सुव्यवस्थित है, लेकिन हमने कभी उसके भाव को समझा नहीं, इसलिए उसका आनंद नहीं ले सकते। तो इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी जयंती हम मनाते हैं। भले 125 साल हो गया, 150 साल से कम हो गए, लेकिन फिर भी बहुत श्रेष्ठ कर्म उनके भी थे। लेकिन जैसे जैसे तीसरा युग आता है द्वापर, जहां सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा, अकाले मृत्यु आरंभ होने लगी, और अकाल मृत्यु जब आरंभ हो जाती है तो जरूर है आत्मशक्ति क्षीण हो गई। 1250 यानी 2500 साल पूरे हो गए, आधा समय पूरा हो गया 5000 साल में, तो आधी कलाएं भी कम हो गई। तो 16 कला से द्वापर युग में सिर्फ 8 कलाधारी हो जाते, इतनी ही पोटेंशियल रह गई, और इसलिए अकाले मृत्यु होने कारण जन्म बढ़ गए, 21 जन्म हो गए द्वापर युग। और इस युग में मनुष्य भक्ति आरंभ करता है, अव्यभिचारी भक्ति होती है। पहले के जमाने के राजाओं के महलों में देखेंगे आप, अगर राजस्थान के एक एक राजाओं के महल को देखने जाएंगे ना, आपको हर जगह महल में एक मंदिर मिलेगा, हर राजाओं के महल में एक मंदिर मिलेगा, और अक्सर हर राजाओं के महल में शिव का ही मंदिर मिलेगा। शिव के पुजारी थे, क्योंकि इमीडिएट द्वापर युग में उतरते ही वो शिव की आराधना करना आरंभ करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में मनुष्य आत्माएं जो देवी देवताएं होकर के गए, उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा आरंभ कर देते हैं। और इस तरह से अव्यभिचारी भक्ति, एक ही भक्ति आरंभ होती है, संन्यास धर्म भी शुरू होते हैं, कुछ महान ऋषियों का जन्म होता है और पुण्य कर्म आरंभ हो जाते हैं। कर्म मनुष्य के पुण्य कर्म होते हैं। इसी युग में परमात्मा का पैगंबर संदेश लेकर के आते हैं और इस तरह से द्वापर युग चलता है, मनुष्य के 21 जन्म होते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कलयुग आता है, तो कलयुग के अंदर एक या दो कला रह जाती है। इसीलिए लोग कहने में कह देते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण है, लेकिन एक तो गुण होगा, उस एक गुण को देख करके ही तो आगे बढ़ो। तो एक या दो गुण रहते हैं। इतनी कला क्षीण हो जाती है, इतनी आत्मा की ताकत क्षीण हो जाती है, और इसलिए अकाले मृत्यु बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य के कर्म इस युग में विकर्म ज्यादा है। विकर्म यानी पाप कर्म, विकृत कर्म, विकारों के वश कर्म, उसको कहा विकर्म। मनुष्य की आयुष्य कम होने लगती है और जन्म बढ़ जाते हैं। कोई जन्म 5 साल में शरीर छोड़ देता, कोई जन्म 80 साल तक, 90 साल तक खींच लेता है। इस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है और कलयुग के अंदर करीबन 42 जन्म होते हैं। इस तरह से अगर गिनती करें, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, मिलकर के 20, द्वापर के 21 माना 41 और कलयुग के 42 माना 83 जन्म, 83। तो 84वां जन्म जो है वो ये संधिकाल के समय, जब कलयुग और सतयुग का संधिकाल का समय आता है, तब सिर्फ एक जन्म होता है। और इस जन्म को कहा गया दुर्लभ, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। इसी जन्म में हमें 84 जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है, इसी जन्म में हमें कर्म की गुह्य गति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी जन्म में जब ये संधिकाल का समय है, तो इस संधिकाल के समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहां दो युगों का संगम होता है और जहां आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, जहां आत्मा पुरुष में से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करती है और ईश्वर की कृपा से उसका कल्याण होता है। इसलिए इस युग का नाम है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसलिए भक्ति में संगम का बहुत महत्व है, गंगा सागर का संगम, क्योंकि यहाँ आत्मा गंगा की तरह और सागर यानी परमात्मा, तो गंगा सागर का संगम होता है। और जो संगम में स्नान करता है, कहते हैं वो प्यूरिफाइड हो जाता है, क्योंकि यही युग में प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आरंभ होती है। मनुष्य उत्तम पुरुष बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने लगता है और परमात्मा का विशेष आशीर्वाद उसके ऊपर रहने के कारण वो उत्तम पुरुष बन करके आगे बढ़ता है। तो ये संगम की महिमा, नर ऐसी करणी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करणी करे जो श्री लक्ष्मी बने, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जहां हो जाता है कि मनुष्य नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी, ये कहावतें भक्ति में ऐसी ही नहीं पड़ी है, ये प्रैक्टिकल हुआ है, इसीलिए कहावत। तो कितने प्रकार के कर्म हमने देखे इस जर्नी में, सतयुग से लेकर के जो हमारी जर्नी अब तक ये संगम युग तक जो पहुंची है, उसमें कितने प्रकार के कर्म है। तो 4 प्रकार के कर्म हमने देखे। सतयुग और त्रेता युग में अकर्म होते हैं, द्वापर युग में पुण्य कर्म होते हैं, कलयुग के अंदर पाप कर्म अधिक होते हैं और ये संगम पर श्रेष्ठ कर्म करने की विधि परमात्मा हमें सिखाते हैं। अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म ही नहीं है, लेकिन आज अगर मैं एक उदाहरण दूं कि मान लो कि मैंने धरनी में एक बीज बोया, अपने हाथों से बीज बोया, ये कर्म मैंने किया, उस बीज को मैंने सींचा, पौधा निकला, उस पौधे को सींचती गई वृक्ष हुआ, और उस वृक्ष के ऊपर फल लगा, वो फल मैंने तोड़ के खाया। ये कर्म भी मैं ही कर रही, बीज बोने का कर्म भी मैंने किया, फल तोड़ के खाने का कर्म भी मैंने किया। दोनों कर्मों में कोई अंतर है? है कोई अंतर? दोनों कर्मों में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? बीज बोने का जो कर्म है उसको कहते श्रेष्ठ कर्म। क्यों? क्योंकि एक बीज जो मैंने बोया उसके मुझे 100 फल प्राप्त हुए, और वो 100 फल भी हर सीजन में, रिकरिंग, हर सीजन में मुझे मिलता है। इसीलिए वो श्रेष्ठ कर्म है कि एक बीज का 100 फल मिला। लेकिन फल तोड़ के खाया उसको कहा जाता अकर्म, कि जिस कर्म का कोई दूसरा फल नहीं मिलता, क्योंकि वो फल खाने का ही कर्म है। तो संगम युग में जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उससे सत्युग और त्रेता युग का फल प्राप्त होता है, और हर जन्म में इतना सुख, रिकरिंग। लेकिन वहां जो कर्म करते हैं फल खाने का कर्म है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए उसको अकर्म कहा जाता है। सत्युग और त्रेता युग में फल खाने का कर्म। जैसे जैसे द्वापर युग में आए तो वो फल बहुत क्षीण हो गया। मान लो कि एक व्यक्ति है, बैंक बैलेंस जमा करता है, उसको पूछो बैंक बैलेंस क्यों जमा कर रहे हैं, तो कहते हैं रिटायर जब हो जाऊंगा तो मुझे काम आएगा, उस समय कौन कमाने जाएगा और कौन मुझे देगा। तो अपना भविष्य सोच करके वो जमा करता जाता है। अब रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद जो जमा किया हुआ उठा उठा करके खाने लगा, अब उसमें जमा नहीं हो रहा है। और खुले दिल से, क्योंकि इतना उसने जमा कर लिया तो खुले दिल से खर्च करता है, बहुत लैविशली रहने लगता है, तो जरूर खत्म तो होगा। जैसे ही खत्म होने लगा बैंक बैलेंस, और वो अपने आप को देखता है कि अभी 10 साल मेरी और आयुष्य लग रही है, लेकिन बैंक बैलेंस इतना नहीं है जो इतना लैविशली मैं 10 साल तक और यूज कर सकूं, तो क्या करेगा? थोड़ा अपना खर्चा कट ऑफ करना शुरू करेगा, या कुछ कंसल्टेंसी करके थोड़ा बहुत कुछ जमा हो जाए, या इंटरेस्ट ही जो मिला उसी से चलाना शुरू करे। ठीक इसी तरह हमने भी इतना लैविशली 2 युग तक अपने कर्म का खाता जो जमा किया हुआ था यूज किया। सत्युग और त्रेता युग में बहुत अच्छे से जिए, लेकिन जब द्वापर युग आया तो देखा कि अभी और 2500 साल चलाना है और इतना बैंक बैलेंस है नहीं। तो हमने भी क्या किया, खर्चे थोड़े कम कर दिए, यानी कर्मों में कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट करना शुरू किया, पुण्य कर्म। और वो पुण्य कर्म कैसे किए? दान करके। सोचा दान करो पुण्य तो जमा कर लो, दान करो पुण्य तो जमा कर लो, और इस तरह से दान करके पुण्य जमा करना शुरू किया। और पुण्य जमा करते हुए द्वापर युग तो पूरा खींच लिया हमने। अब कलयुग आया, बैंक बैलेंस नील हो गया। जब बैंक बैलेंस नील हो जाता तो और भी 2-4 साल बाकी हो तो क्या करेंगे? उधारी खाता चालू करेंगे, कहीं से ले लिया, बच्चों से ले लिया, इसे कि भाई अभी 2-4 साल जो जीना है वो पूरा कर लेता। तो इसी तरह कलयुग में हमारा भी उधारी खाता चालू हो गया, क्योंकि जाने अनजाने पन में भी पाप कर्म बहुत होने लगे। जाने अनजाने पन में पाप कर्म, पुण्य कर्म जहां तक था वहां तक तो ठीक था, लेकिन जाने अनजाने पन में पाप कर्म बहुत हो गए। अब जान के तो मुझे पता है कि मैंने किसी को दुख दिया, ये पाप कर्म के खाते में जमा हुआ उधारी खाता हो गया। मैंने किसी को तकलीफ दी, पाप कर्म में हो गए, ये तो मुझे मालूम है जान करके जो हुआ। लेकिन अनजानेपन के पाप कर्म कौन से हुए? तो अनजानेपन के पाप कर्म है कि मान लो कि एक भिखारी है उसकी दशा को देखते हुए मुझे दया आ गई और मैंने 50 रुपए की नोट निकाल करके उसको दे दिया। मैंने सोचा मेरा तो पुण्य कर्म हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इज गोइंग टू यूज दैट मनी। उस 50 रुपए से उसने चाकू खरीदा और किसी का खून किया, तो उसने जो कर्म किया मैंने दिया तब किया, इसीलिए उस कर्म के भागीदारी में मेरा कर्म हो गया। ऐसे पार्टनरशिप में हमारे जो कर्म हुए वो है अनजानेपन के पाप कर्म। तो कई लोग पूछते क्या दान नहीं करना चाहिए। कलयुग के लिए यही कहा गया है शास्त्रों में भी कि पात्र देख करके दान करना चाहिए, कुपात्र को दान न करो, जो हमारा आगे का खाता भी नुकसान में चला जाए। पात्र देख करके दान करो। तो कहेंगे कई लोग के पात्र कैसे देखे, अरे आप किसी को एजुकेशन दो, पढ़ाओ लिखाओ, कई तरह से दान तो कई तरह से हो सकता है, कोई एक तरह से नहीं होता है कि बस भिखारी है उसको दे दिया तो ही हमारा दान गिनती होगा, बाकी नहीं गिनती होगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहा पात्र देख करके दान करो। किस तरह का दान करना है ये सोच समझ के करो। ऐसा न हो कि चलो हमारे पाप कर्म का खाता तो है ही है, लेकिन दूसरे के साथ में पार्टनरशिप बनाना पाप कर्म में, वो कहां की समझदारी है। इसलिए ऐसी पार्टनरशिप में नहीं जाओ, क्योंकि जब चुकतू करना होगा ना तब भी साथ में मिलके चुकतू करना होगा। आज भिखारी को तो दान दिया, उसने चाकू खरीदा, किसी का खून किया, अब चुकाने का समय आता है तभी भी साथ में ही चुकाना पड़ता है। कैसे चुकाते हैं कि दूसरे जन्म में, जैसे ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, आजकल के दुनिया में अप डाउन करने वाले बहुत होते हैं ट्रेन में भी, और आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत फुल है ट्रेन, जा रहे हैं लेकिन खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है, उसमें एक व्यक्ति ने आपको देखा, उसको आपके प्रति भाव जागृत हुआ और थोड़ा खिसक कर उसने आपको कहा बैठो आप, आपको लगता है कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसने आपको ही बैठने के लिए क्यों कहा, कुछ तो पार्टनरशिप है। इसीलिए आपको ही कहा, नहीं तो दूसरे भी 10 लोग खड़े थे और किसी को नहीं कहा, आपको क्यों कहा। अब बिठाया तो सही, अब अप डाउन करने वाले जब चलते हैं तो वो पिछले दिनों में कुछ हुआ होगा उस व्यक्ति के साथ, उसको ढूंढते हुए कुछ लोग आए और आकर के गाली गलौज करना शुरू कर दिया, और आपको लगता है ये व्यक्ति इतना अच्छा कुछ बोल भी नहीं रहा है और ये लोग इतना असभ्य व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा गाली गलौज क्यों कर, आप बीच में बोलने जाते हैं। अब बीच में बोलने गए, उनको लगता है आप भी उनके साथ हैं, उनको तो मारते आपको भी 2-4 थप्पड़ मार देते, अब आप कहते मैं तो इनोसेंट था, मुझे क्यों मारा। इनोसेंट नहीं थे, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप थी, इसीलिए मार खानी पड़ी, दूसरे किसी को तो मार नहीं खानी पड़ी। अब पार्टनरशिप खाली 2 व्यक्ति में नहीं होती है, कर्मों की पार्टनरशिप कई बार 50-100 लोगों के बीच में भी हो जाती है। कैसे, आज मान लो एक कसाई है, कसाई ने किसी जानवर को मारा, उसने उस मांस को बेचा दुकान वाले को, दुकान वाला भागीदार हो गया, दुकान वाले से होटल वाले ने खरीदा, होटल वाला भागीदारी में जुड़ गया, होटल वाले ने बाबरची को दिया, बाबरची ने पकाया, वो भी उस भागीदारी में जुड़ गया, उस होटल में पार्टी है, पार्टी में 50 लोग आए हैं और 50 लोगों ने खाया, वो सारे उस भागीदारी में जुड़ गए। अब चुकाने का समय जब आता है ना, तो जब सबका योग इकट्ठा होता है, समय का संजोग, तब चुकाना पड़ता है। कि कई बार आप देखते हैं कि कई लोग यात्रा पर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अब बस में चढ़े, सभी जो भी उस बस में बैठे हैं सभी का संजोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से, और जैसे ही पहाड़ी पर बस जा रही है और अचानक एक जानवर दौड़ता हुआ आया, वही जानवर दौड़ता हुआ आया या वो जानवर दौड़ते हुए आए, आप जो ड्राइवर था कसाई था पिछले जन्म में, बचाने गया, इस बार बचाने गया और उसका संतुलन बिगड़ा और वही जानवर निमित्त बना और उस कसाई निमित्त बना के सबके साथ वो खाई में गिरी बस, और सबको चोट लगी। अब आप कहेंगे बैठने वाले पैसेंजर्स तो सारे इनोसेंट लोग थे, इनोसेंट लोगों को चोट लगी ड्राइवर की गलती के कारण, अरे क्यों बचाने गया? एक भी इनोसेंट नहीं था, पहली बात, एक भी इनोसेंट नहीं था। जो इनोसेंट था वो अगले स्टेशन पर उतर गया, जो इनोसेंट था उसकी बस मिस हो गई, है ना, वो इनोसेंट थे। और उसके बावजूद भी अगर कोई बैठा था जो इनोसेंट था, इतनी खाई में गिरने के बाद भी उसको एक खरोच तक नहीं आती है, वो इनोसेंट था। अब जिसको जहां जहां लगती है, किसी को यहां लगी, किसी को यहां लगी, किसी को यहां लगी, किसी को कहां लगी, जिस जिसने जो हिस्सा खाया था वही लगती है उसको। ये है कर्म की गुह्य गति, ये है कर्म की गुह्य गति, है ना। और ज्यादा हिसाब होगा तो ट्रेन डीरेल हो जाती है, और ट्रेन डीरेल हो जाती है सबको लगती है चोटे, किस तरह से लगी मालूम, इनोसेंट लोग, अरे कोई भी इनोसेंट नहीं था। और ज्यादा होगा 100-200 लोग फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट क्रैश हो जाता है। जैसा जैसा कर्म का हिसाब, इसीलिए का जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म की गति अति गुह्य है। तो जाने अनजाने पन के किए गए पाप कर्म भोगना ही पड़ता है, उससे कोई छूट नहीं सकता है। इसीलिए परमात्मा इस समय आकर के हमें श्रेष्ठ कर्म की विधि बताता है कि श्रेष्ठ कर्म कैसे करना चाहिए। तो जैसे एक किसान होता है, किसान जब खेती के अंदर बीज बोता है ना, तो धरनी की क्वालिटी को देखता है कि इस धरनी में कौन सा बीज उगेगा, तो धरनी की क्वालिटी देखता है, हवा की क्वालिटी देखता है, गर्मी है ठंडी है क्या है, पानी की क्वालिटी देखता है, सब क्वालिटी देखने के बाद वो बीज बोता है। ठीक इसी तरह परमात्मा भी हमें श्रेष्ठ कर्म के बीज कैसे बोने हैं ये सिखाते, क्योंकि कर्म भी एक बीज है और वो कर्म का बीज हमें भोगना ही पड़ता है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि तुरंत ही दूसरे जन्म में भोगना पड़े, नहीं। जैसे मिर्ची का बीज डालो 3 महीने में फल निकलेगा, अनाज का बीज डालो 6 महीने में फल निकलेगा, फल का बीज डालो 1 साल के बाद या 2 साल 3 साल के बाद फल मिलेगा, और नारियल का बीज डालो तो 10 साल के बाद फल मिलता है। बीज की जैसी पोटेंशियल होती है, ठीक इसी तरह कर्म भी एक बीज है, और जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्त होगा, लेकिन जितनी इंटेंसिटी से किया गया है उस अनुसार फल भी मिलेगा। अगर बहुत इंटेंसली किया गया है तो तुरंत दूसरे जन्म में भी मिल जाएगा या इसी जन्म में भी मिल जाएगा, महसूस होगा फलाने कर्म का ये फल मिला इमीडिएट। कुछ कर्म के फल दूसरे जन्म में मिलते हैं, कुछ कर्म के फल 2, 4, 5, 10 जन्म के बाद भी मिलते, और कुछ कर्म के फल 25-30 जन्म के बाद भी मिलता है। इसलिए मनुष्य जब दुखी होता है तो क्या कहते, कौन से जन्म का कर्म था जो आज ये फल भोग रहा हो, कौन से जन्म का, कोई भी जन्म का हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन एक बात जरूर है, जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा, जितना देरी से मिलेगा ना तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। बैंक में जितना साल रखेंगे, एफडी रखेंगे तो उसका इंटरेस्ट वैसा ही मिलेगा, सेविंग्स में होगा तो वैसा इंटरेस्ट मिलेगा। तो मनुष्य को भी जितना जल्दी फल मिल जाए उतना कम इंटरेस्ट में मिल जाएगा, भोगना कम होगी। लेकिन जितना देर के बाद मिलता है उतना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होकर के जब मिलता है तो भोगना भी बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए उसको कहते संचित कर्म, जो संचित हो गए लेकिन उसके साथ एक्यूमुलेटेड विथ इंटरेस्ट। संचित कर्म जब फल भोगने का समय आता है तो बहुत दर्द होता है, ज्यादा तकलीफें होती हैं। इसलिए जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म करने की विधि क्या है, तो उसके लिए धरनी चेक करना है। कौन सी धरनी है? तो श्रेष्ठ चरित्रवान जीवन रूपी धरनी। उसके बाद अच्छे कर्म का बीज, फिर संयम और नियम की खाद डालना है, फिर वायु कैसा होना चाहिए, तो अच्छे संस्कारों का, वातावरण का, घर का माहौल का वायु अच्छा हो, जहां हमारे अच्छे संस्कारों में हम पले या अपने बच्चों को पाले, वो वायु का काम करता है। उसके बाद ज्ञान सूर्य की शक्ति की धूप भी अच्छी देनी चाहिए। तो जितना परमात्मा को याद करेंगे, उसकी सकाश एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो उतनी धूप होगी, धूप का कार्य करता है। फिर उसको नित्य ज्ञान अमृत से सींचना है, रेगुलर अच्छे विचारों का नरिशमेंट उसको देते हुए सींचना है। और जब सींचते हैं तो जरूर फल जब पक जाता है तो चिड़िया आती है उसको खराब करने के लिए, या कीड़ा ना लग जाए इसका ध्यान रखना है। तो कौन सी चिड़िया खराब करने आती है? संग का रंग। या अगर मनुष्य को अपने कर्म, अच्छे कर्म का भी घमंड आ गया तो ये कीड़ा लग गया, वो फल भी स्वीकार नहीं होगा। तो अच्छे कर्म के प्रति घमंड न हो, नहीं तो ये कीड़े वाला फल भी स्वीकार नहीं होगा। निर्माणता जितनी होगी उतना मधुर मीठा होगा वो फल। और संग के रंग से अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये संग का रंग यही चिड़िया है जो खराब करती है, वो भी स्वीकार नहीं होता है। अच्छे घर के बच्चे अच्छी परवरिश प्राप्त करने के बाद भी बुरी संगत में जब लग जाते हैं तो देखते हैं कैसे समाज में कोई उसको स्वीकार नहीं करता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, वो फल स्वीकार करने योग्य नहीं है। और जहां उस संग के रंग से भी बचाते हैं, घमंड से भी बचाते हैं, तब जाकर के जीवन के अंदर प्रसन्नता, संतुष्टता उस फल के स्वीकार करने के बाद मिलती है। तो इसीलिए ये है श्रेष्ठ कर्म करने की विधि। अगर इन बातों की जागृति हो, अवेयरनेस हो और हम कर्म करते जाए तो हमेशा संतुष्टता और प्रसन्नता जीवन में सदा बनी रहेगी, उसके जैसा कोई फल नहीं है। इसीलिए परमात्मा नित्य हमें यह ज्ञान और योग की शिक्षा देकर के हमें यही बताते हैं कि कैसे जीवन के अंदर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न जरूर आता है, थोड़ा टाइम में एक्स्ट्रा लूंगी आपका, कि ये प्रश्न जरूर मन में आता है कि बहन जी आज की दुनिया में कई लोग बुरे कर्म करने वाले हैं लेकिन मौज कर रहे हैं, और अच्छे कर्म करने वाले भोग रहे हैं, ऐसा क्यों? बुरे कर्म करने वाले मौज कर रहे हैं और अच्छे कर्म करने वाले दुख भोग रहे हैं, तो क्या भगवान के घर में भी अंधेर है? अंधेर की बात नहीं है। बहुत सुंदर एक उदाहरण याद आता है मुझे कि एक बार दो व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, جا رہے تھے اپنے اپنی طرح سے، اچانک راستے میں کسی کا پرس گرا ہوا. اب دونوں ویکتی نے دیکھا وہ پرس. ایک ویکتی جو تھا بڑا ایماندار تھا، دوسرا ویکتی بڑا بے ایمان تھا. جو بے ایمان تھا اس نے پرس اٹھا لیا، دیکھا اس میں 1000 روپیہ پڑا ہے، بڑا خوش ہو گیا، آج تو بنا محنت کے ہی 1000 روپیہ مل گئے. لیکن اس کو لگا اس ویکتی نے بھی دیکھا ہے، مل بانٹ لینا چاہیے. تو اس نے کہا دیکھ بھائی اس میں 1000 روپیہ ہے، 500 تو رکھ لے، 500 میں رکھ لیتا. دوسرا تو ایماندار تھا، اس نے کہا دیکھ بھائی یہ پرس جس کا بھی گرا ہوگا بڑا دکھی ہو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی کمائی ہوئی ہو آج اور 1000 روپیہ لے جاؤ گر گیا. اس کا ایڈریس اگر ہے دیکھ کے آئیں گے تو کتنی دعائیں دیں گا. تو اس نے کہا دیکھ بھائی اس میں ایڈریس تو ہے نہیں تو ہم کس کو دیں گے، اس لیے رکھ لینا ہی چاہیے. تو اس نے کہا مجھے تو نہیں چاہیے. پھر اس نے کہا ایماندار نے کہ چلو پولیس میں دے کے آتے ہیں، وہ ڈھونڈتا ہوا کمپلین لکھایا ہوگا تو اس کو مل جائے گا تو خوش ہو جائے گا. تو بے ایمان کہتا ہے دیکھ بھائی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے نصیب میں ہوتا تھا نا تو گرتا ہی نہیں تھا، اور گرنے کے بعد پہلے یہاں کوئی گیا ہی نہیں، ہم ہی پہلے نمبر ہیں اور ہمیں ہی ملا ہے، اس لیے اس کو پرساد مان کے سویکار کر لینا چاہیے. اگر تمہیں نہیں چاہیے تو میں پورا رکھنے کے لیے تیار ہوں. ایماندار نے کہا مجھے تو نہیں چاہیے. اس نے کہا پولیس میں تو دیکھے آ سکتے. کہا ارے بھائی اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے تو پولیس والے آپس میں مل بانٹ کے کھا لیں گے، اسے تو میں ہی نہ رکھ لوں، ایسی سمجھداری میں دکھانے والا نہیں، ٹھیک ہے رکھ لو. دونوں باتیں کرتے ہوئے جیسے آگے نکلے، باتیں کرتے کرتے چلتے جا رہے تھے تو اچانک جو ایماندار تھا اس کو بہت زور سے کانٹا لگا اور اتنا زور سے اندر گھس گیا کہ پورا خون خون نکلنے لگا. تو بے ایمان اس کو کہتا ہے بڑی ایمانداری کی باتیں کر رہا تھا نا تبھی یہ کانٹے لگتے. بے ایمانی سے جیو پرس ملے گا، ایمانداری میں تو کانٹے ہی ملتے. اب اوپر سے اسی وقت کچھ دیوتائیں برمن کرتے ہوئے جا رہے تھے. دیوتاؤں نے جب یہ بات سنی تو سب مل کر کے بھگوان کے پاس گئے اور کہا بھگوان لگتا ہے چترگپت کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ نہیں اب بھی ہم یہ درشیہ دیکھ کے آئے کہ نیچے یہ دونوں ویکتی جو ہے اس میں ایک ہے بڑا ایماندار ایک ہے بڑا بے ایمان. بے ایمان کو تو پرس مل گیا، ایماندار کو کانٹے لگ رہے ہیں، یہ کہاں کا نیائے ہے؟ ضرور چترگپت نے گڑبڑ کی ہے. بھگوان نے کہا چترگپت کبھی گڑبڑ تو کر نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے میں چترگپت کو بلا لیتا ہوں. چترگپت کو بلایا اور کہا دونوں کا اکاؤنٹ لے کر کے آؤ. دونوں کا اکاؤنٹ منگایا تو دیکھا کہ جو ایماندار تھا پہلے بڑا بے ایمان تھا، اور جو بے ایمان تھا پہلے بڑا ایماندار، اور اس نے جیون اتنا ایمانداری سے گزارا تھا کہ اس کے فل سوروپ اس کو بہت بڑی ایک لاٹری لگنے والی تھی، کروڑوں روپیہ کی لاٹری لگنے والی تھی. لیکن لاٹری لگنے سے پہلے ایک پریکشا لی گئی، اور اس وقت ویکتی کی دھیرتا ختم ہو گئی اور وہ دھیرے ہو گیا ایک دم کہ بھئی ایمانداری سے جینے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا ہے، اور اس ادھیریتا میں آ کر اس نے پورا راستہ بدل دیا، بے ایمانی کے راستے پر چل پڑا. تو وہ جو پھل تھا کھین ہوتے 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 صرف 1000 روپیہ بچا تھا. تو 1000 روپیہ اس کی بے ایمانی کا پھل نہیں ہے، اس کی ایمانداری کا کھاتے کا اتنا ہی بچا تھا، لیکن اس کے بھاگیہ میں کیا تھا جو ٹھکرا دیا اس نے ادھیریتا کے کارن، اس لاٹری کو ٹھکرا دیا. لیکن وہ گیان نہیں، और जो ईमानदार था पहले बड़ा बेईमान था, और उस बेईमानी के फल स्वरूप उसको इतनी कड़ी भोगना भोगनी थी, ऐसी बीमारी होने वाली थी कि जिसकी भोगना में वो तड़प तड़प करके उस दिन को गुजारता था। लेकिन उस भोगना से पहले उसको भी सुधरने का एक लास्ट चांस दिया गया, और उस अपॉर्चुनिटी को उसने झड़प लिया, और वहां से उसने अपना रास्ता बदल दिया, ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ा। वो सारी भोगना कर्मों के द्वारा ही काटते हुए लास्ट में बस एक कांटे चुभने जितना ही दर्द रह गया था। तो ये ईमानदारी का फल नहीं था, बेईमानी के खाते का इतना ही बचा हुआ था। अभी ईमानदारी का फल तो बाकी है, और बेईमानी का फल जो उसने किया है वो तो बाकी है। तो इसीलिए ये मत समझना कि बेईमान मौज कर रहा है, ईमानदार दुखी हो रहा है। नहीं, क्योंकि उनके पूर्व कर्म के अकाउंट्स, इसलिए चित्रगुप्त कभी भी देखा जाए तो बहुत एक्यूरेट हिसाब किताब रखता है। कई लोग हमसे पूछते हैं, इतने करोड़ों मनुष्य है दुनिया के अंदर, चित्रगुप्त कैसे मेंटेन करता होगा करोड़ों मनुष्य का हिसाब किताब? उसके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो हरेक का हिसाब किताब इतना एक्यूरेट मेंटेन करता है? चित्रगुप्त नाम में ही वो समाया हुआ है, चित्रगुप्त, गुप्त चित्र। चित्रगुप्त ने क्या किया है, अपने अकाउंट एक्यूरेट मेंटेन करने के लिए अंदर में एक ऐसा कैमरा फिट कर दिया है जो हर कर्म का, हर भावना का चित्र निकालता जाता है। जो कहा ना, लास्ट में हमारे सामने हमारे जीवन की पूरी फिल्म की रील की तरह आ जाती है, तो गुप्त कैमरा जो चित्र खींचता जाता है, कंटिन्यू स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। क्योंकि भगवान जानते थे कलयुगी मनुष्य है ना, कर्म करने के बाद भी इनकार करने में देरी, बड़ी सफाई से इनकार कर सकेंगे कि ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं है ना, इसलिए उनका स्टिंग ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कैमरा फिट किया हुआ है कि जो हर पल हमारे हर कर्म का चित्र खींचता जाता है, इसलिए जब सामने आता है तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कर्म मैंने नहीं किया है, या इस भावना से कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे सकते, ये भावना से किया नहीं किया दे ही नहीं सकते। चित्रगुप्त की अकाउंट मेंटेन करने की जो तरीके हैं वो बहुत ही न्यारे और निराले, इसीलिए तो उसका नाम चित्रगुप्त है कि करोड़ों मनुष्य का भी अकाउंट बहुत क्लियर रख सकता है, है ना? कई लोग हमसे पूछते हैं वो कैमरा कहाँ है, ऑपरेशन करवा दे निकाल लेता है। वो भगवान ने कहीं नहीं बताया है, या वो इतना सीक्रेट है, जो कैमरा आप कितना भी स्कैन कर लो ना दिखाई देता है, एक्सरे निकाल लो ना दिखाई देता है कि वो कैमरा कहाँ है, और न किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से वो कैमरे को निकाल सकते हैं। चित्रगुप्त की सारी मशीनरी इतनी सूक्ष्म है कि कोई भी मनुष्य उसमें इंटरफियर या ये नहीं कर सकता है, उसके साथ फिडल नहीं कर सकता है कि उसको निकाल सके। तो इसलिए परमात्मा ने जो विधि बताई है कर्म की श्रेष्ठ विधि, इस संगम युग में जब परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिलती है और उसके आधार पर जब हम चलते हैं जीवन में, श्रेष्ठ कर्म का आचरण करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे साक्षात भगवान बैठकर हमारा भाग्य विधाता बन करके भाग्य लिख रहा है। और ये भाग्य जो लिख रहा है कि सतयुग और त्रेता युग का भाग्य इतना श्रेष्ठ और सुमधुर महसूस होता है कि जहाँ मनुष्य सुखद रूप से जीते हैं, और हर इंसान को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भगवान ने कोई न कोई विशेषता ऐसी दी हुई है। इस युग में भी कोई न कोई एक अच्छी बात हरेक के अंदर है जिस माध्यम से मनुष्य जितना ऊंचा उठना चाहे, जितना आगे बढ़ना चाहे, जितना श्रेष्ठ कर्म करना चाहे कर सकता है। तो ये है कर्म की गुह्य गति, क्योंकि इस परिवर्तन की वेला में जितना हम स्वयं को अच्छी तरह समझते हुए परिवर्तन कर ले और श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने के लिए जो विशेषता मिली है उसके आधार से कर्म करना आरंभ कर दे, तो अनेकों की दुआएं परमात्मा दुआओं को प्राप्त करते हुए जब इस संसार से जाने का समय आ जाए तो इतना सुंदर तरीके से हम जाएं और सहजता से उस परमात्मा धाम में जाकर के परमात्मा प्यार की अनुभूति करते हुए आत्म शुद्धिकरण करके बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन को बना ले। तो ये है कर्म की गुह्य गति। प्रश्न आया है कुछ तो? हाँ, किसी ने प्रश्न पूछा है कि क्या मनुष्य पशु योनि में नहीं जाता है, लेकिन पशु समान जीवन जरूर बन जाता है। जो हम वो बात बताना भूल गए उधर कि पशु समान जीवन जरूर हो जाता है। आज एक पशु भी डस्टबिन से खा रहा है, एक मनुष्य भी डस्टबिन से खाना पिकअप करने, पशु समान जीवन है। हाँ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है। मैंने समझा था कि पहले दिन आत्मा के लेसन में शायद ये बात क्लियर हो गई होंगी, लेकिन जैसे स्टेज पर एक्टिंग करने वाले एक्टर्स एक साथ में नहीं आ जाते हैं, कुछ बैक स्टेज पर होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे जिसका समय होता है वैसे आते जाते हैं। ऐसे सतयुग से लेकर के जो आत्माएं आई है, फिर धीरे धीरे जो परम धाम में है तो परमधाम से संसार में उतरते जाते अपने अपने समय पर। कोई पहले आते हैं, कोई बाद में आते हैं, लेकिन अभी कलयुग के अंत में परमधाम खाली हो गया है, पूरी आत्माएं संसार के स्टेज में आ चुकी है। जो दो चार है वो अभी बाकी है, वो आ रही है बस। और जब सारे एक्टर्स हाजिर हो जाते तब जाने का समय फिर से आता है। तो बैक स्टेज में जरूर है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। परमात्मा ने यह दुनिया क्यों बनाई? परमात्मा ने इसलिए बनाई क्योंकि आज जैसे आपके घर में अगर बच्चे हो और बच्चे को आप पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेट करो, उसके अंदर टैलेंट्स है, स्किल्स है, पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को कहो कि भाई अभी हमारे पास इतना इनफ धन है, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर में बैठो और भोगो, वो बच्चा एक्सेप्ट करेगा नहीं? कहेगा फिर पढ़ाई लिखाया क्यों मुझे, इतना योग्य क्यों मैं, अभी जो मेरे अंदर टैलेंट्स है, स्किल्स है, आई वॉन्ट स्पेस। कहते हैं ना, आई वॉन्ट स्पेस, कि जहां मैं उसका प्रयोग करूं। ठीक इसी तरह आत्मा में भी इतनी पोटेंशियल है, घर में बैठने के लिए नहीं है। इसीलिए एक स्पेस देने के लिए भगवान ने इस दुनिया को बहुत सुंदर बना करके दिया था। जहां हमें स्पेस दिया गया उसको अच्छी तरह से हम ये करें, तो सतयुग और त्रेता युग के अंदर तो हमने अच्छी तरह से उसको ये किया, यूज किया, लेकिन धीरे धीरे जब आत्मशक्ति क्षीण हुई, वीकनेसेस आती गई, वीकनेस आने के बाद बॉडी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ता गया, तो हमने ही ये दुनिया को क्या बना दिया। जैसे बच्चा तोड़ फोड़ करके कैसे उसको पूरा खत्म कर देता है, कई बार विकृति जब आ जाती है तब, तो आत्मा में भी जब विकृति आ गई तो इतना सुंदर जो स्थान बना के दिया था, पैराडाइज, हेवन, जन्नत, जो भी कहो, उसको हमने ही बिगाड़ दिया। बाकी भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी, उसने तो बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी, है ना? और वो हमें स्पेस देने के लिए बनाई थी। ठीक है, बोलो। बाकी ही दूसरा प्रश्न है, मरने के बाद जो क्रिया कर्म दान पुण्य दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जिसे कर्मकांड कहते हैं, उनका फल क्या क्या करने वाले को, या जिसके लिए किए उसको मिलता है, जरूर कुछ प्राप्त होता है। माना जिसके निमित्त अगर मैंने कुछ दान किया तो उस आत्मा को जैसे सामने रखते हुए कि भाई उसने तो नहीं किया अपने हाथों से, मैं उसके तरफ से कर रही हूँ, ये जो पुण्य कर्म है उसके खाते में जमा हो, उस भावना से किया गया। तो जैसे हम किसी को मनी ट्रांसफर करके दे देते हैं, उसके अकाउंट में डाल देते हैं, तो ऐसे उसको प्राप्त जरूर होता है। इसलिए हर वाइब्रेशंस भी वो अनुभव करता है। मनुष्य जब रोता है तो भी वो वाइब्रेशन कैच करता है, जब उसके निमित्त कोई अच्छा कर्म करता है तो भी वो कैच करता है। तो हर आत्मा उसको महसूस करती है, महसूसता की शक्ति आत्मा के अंदर है, तो इसीलिए उस आत्मा को जरूर प्राप्त होता है। बाकी जो क्रिया कांड करते हैं वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि आत्मा ने जितने साल बिताए अपने रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ, तो जरूर एक मोह का बंधन होता है। और वो मोह का बंधन कैसे टूटेगा? भले शरीर छूट गया लेकिन 12 दिन तक आत्मा आसपास होती है, क्योंकि उस मोह का लगाव के कारण वो आसपास होती है। और इसीलिए जब क्रियाकांड करके 12 दिन के बाद जब पूरा हुआ और हरेक अपने अपने काम में लग जाते हैं, और वो आत्मा जब देखती है कि अभी कुछ किसी को कोई मतलब नहीं है, तब उसका मोह जाके टूटता है कि उसने तो सारी विधि करके मेरे को विदाई भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, माना अब मेरे से कोई मतलब नहीं, तब जाके उसका मोह टूटता है। और मोह टूटता है फिर जाकर के वो दूसरे जन्म की अपनी तैयारी करता है। बाकी अगर मोह नहीं टूटा जाता है, वो क्रियाकांड नहीं करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो करने वाले हैं उसके मन के प्रति भी, जैसे उसको विदाई दे दिया और वो आत्मा जो आसपास होती है वो भी जब देखती है उन बातों को, तो वो भी जब ये देखती है कि भाई अभी नहीं है किसी को मेरे लिए, तो वो फिर चली जाती है। तो इसीलिए ये मोह तोड़ना बहुत जरूरी होता है। मोह तोड़ने के लिए ही ये कुछ विधियां बनाई हुई है, ताकि वो विधि करने के बाद जब अपने अपने कर्म में लग गए साइकोलॉजिकली, वो कोई उसको याद भी नहीं करता है, तो फिर वो आत्मा चली जाती है, नहीं तो वो कई बार तकलीफ भी देते हैं। बाकी काफी प्रश्न आए हैं, मैं ऐसा समझती हूँ जिसको भी कर्म से रिलेटेड प्रश्न है इंडिविजुअली अगर मुझे आकर के पूछ सकते हैं, आप जानना चाहते हैं तो। बाकी तो मेजोरिटी मैंने जो मुख्य बातें बतानी है वो तो अवश्य बता ही दी है, लेकिन क्योंकि बाकी सबका टाइम न जाए, है ना, क्योंकि आज कईयों को जाना भी है, वो आपको एडवांस कोर्स में बताया जाएगा कि कैसे चलता है, क्योंकि इट्स लाइक अ चेन, है ना, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, तो ये कड़ी है कि हर कॉज का एक इफेक्ट है, हर इफेक्ट के बाद एक नया कॉज क्रिएट होता है, वो कॉज का इफेक्ट है, उसके बाद उस इफेक्ट का एक नया कॉज होता है, उसका इफेक्ट, तो ये चेन है। और ये कड़ी जो है सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो जब वो कड़ी जुड़ते 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 लास्ट में आ जाती है, फिर वो कॉज उसी इफेक्ट के साथ जुड़ जाता है, श्रेष्ठ कर्म से वो फल के अंदर जुड़ जाता है। तो इट्स लाइक अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इसीलिए वो 5000 साल का कर्म का जो साइकिल है वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस में ही चलता है, क्योंकि कॉज इफेक्ट होता है।